ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 1 मार्च 1968। बाप दादा यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई मनुष्य सारी दुनिया में नहीं होगा जो कहते हो बाप दादा। क्योंकि बाप अलग होता है और दादे अलग होते हैं, या तो बाप अलग होता है और दादा अलग होता है। और यहाँ है एक ही बाप दादा, भल कोई कहते हैं हमारे में ईश्वर है, पढ़ाते हैं, परंतु बाप दादा कोई नहीं कह सकते होंगे। ये ब्रह्मा है शिव बाबा का एडॉप्शन बच्चा, एडॉप्शन साकार में होती है या निराकार में होती है? तो ब्रह्मा एडॉप्शन है, और किसने एडॉप्ट किया? शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। तो एडॉप्ट करने वाला और जो एडॉप्ट हुआ ब्रह्मा, वो दोनों अलग अलग हुए या एक ही हुआ? एडॉप्ट करने वाला और जिसको एडॉप्ट किया गया, वो दोनों आत्माएं साकार शरीर से अलग अलग हुए या एक ही हुए? शिव बाबा ने अडॉप्ट किया ब्रह्मा को, इसलिए मुरली में पूछते भी हैं। ब्रह्मा का रचयिता बाप कौन? तो रचयिता अलग होता है, रचना अलग होती है। ब्रह्मा अगर बच्चा है तो ब्रह्मा बच्चा का बाप भी तो होगा ना। तो बोला, देखो इतने सब ढेर बच्चे हैं, बाबा यहां बैठे बात भी सबसे करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो अर्थ सहित बाप दादा कहता हो। कहे तो भी ये नॉलेज दे न सके। तुम बच्चे ये भी समझा सकते हो, माउंट आबू में हमारा बाप दादा बैठे हैं, अगर कहते हैं हमारे में परमेश्वर है तो एडॉप्शन किया होगा। यहां तो लिखते भी हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, जिसको एडॉप्ट किया उसका नाम बदल दिया। तुम्हारा भी नाम बदल दिया था ना? इनका नाम तो कब बदल नहीं सकता, क्योंकि ये कभी आश्चर्यवत भागंती हो न सके। इनका तो सर्टन है, इनका माने किनका? इनका एक के लिए कहा जाता है या दो के लिए या बहुतों के लिए? इसका एक के लिए और इनका कम से कम दो के लिए। तो इनका कहने से किस तरफ इशारा हुआ? राम और कृष्ण की तरफ इशारा किया कि इनका तो सर्टेन है, ये कभी भी भाग नहीं सकते। बल ब्रह्मा का शरीर भी छूट गया। कृष्ण वाले अंतिम चोले का शरीर छूट गया, परंतु काम किए बगैर भाग नहीं सकते, इनका सर्टन है। सभी बच्चे जहां भी हैं जानते हैं हमारा बाप दादा है। हम बाप दादा द्वारा यह वर्षा लेते हैं। किसके द्वारा? बाप दादा द्वारा। तो द्वारा माने मीडिया। मीडिया कौन हुआ? एक आत्मा या दो आत्मा? एक आत्मा, बाप दादा। बाप दादा आत्माएं दो हैं, परंतु पर्सनालिटी एक है। तो जानते हो हम बाप दादा द्वारा यह वर्षा लेते हैं, या कि ऐसा समझते हो कि ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो द्वारा माने मीडिया ही खलास हो गया? नहीं, बोला है ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुधा हुआ है। जब तक स्थापना पूरी नहीं होती है पाठ समाप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा की हजार भुजाएं गाई जाती हैं, भुजाएं अपने आप नहीं चल सकती, भुजाओं को चलाने वाला चाहिए। तो बच्चों को समझना है कि दो बेहद के बाप हैं। एक है पारलौकिक बाप, वो भी बेहद आत्माओं का बाप है, और दूसरा है वो तो पारलौकिक बाप है, पारलोक में रहने वाली आत्माओं का बाप है, और दूसरा बेहद का बाप कौन है? सारी बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप वो लौकिक है या पारलौकिक है? पारलौकिक है, इस लोक का ही है, लेकिन बेहद का बाप है। हद का बाप एक जन्म देता है, या हद के बापों ने 84 जन्म दिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो सब अलग अलग होते हैं। हर जन्म में एक बाप, और यहां सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप, वो है लौकिक बाप बेहद का, और वो है आत्माओं का बाप बेहद का पारलौकिक बाप। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हमको तीन बाप हैं, किसकी बुद्धि में होगा ही नहीं। तुम बता सकते हो प्रजापिता ब्रह्मा हमारा भी बाप है, और पारलौकिक बाप भी हमको मिला है ड्रामा पैलन अनुसार। ड्रामा अक्षर कोई जानते नहीं है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक्यूरेट रिपीट होती है, तो ड्रामा ही कहेंगे। और ये बेहद का ड्रामा तो बिल्कुल ही एक्यूरेट है, इस बेहद के ड्रामा में दोनों ही बेहद का बाप अपने टाइम पर पार्ट बजाते हैं। उस ड्रामा में तो फिल्म बदली कर सकते हैं, दूसरी फिल्म ज्वाइंट कर सकते हैं, परंतु ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा है। जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं सब अविनाशी हैं और अनादि हैं। इस सृष्टि का चक्र रिपीट करता रहता है। अगर लाखों वर्ष कहते तो भी रिपीट करेगा, परंतु लाखों वर्ष के हिसाब से तो आदमी बहुत हो जाएंगे। अभी हिसाब निकालते हैं, इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं, लाखों वर्ष की तो आदमशुमारी ही बहुत हो जाए। बाप ने समझाया ये 84 का चक्र है, अभी तुम जज करो। कि महाभारी महाभारत लड़ाई भी अभी अभी हुई थी, जास्ती टाइम नहीं हुआ है। इसलिए शास्त्रों में भी दिखाते हैं महाभारत युद्ध हुए 5000 वर्ष व्यतीत हुए, उस महाभारत युद्ध में मुसलों की लड़ाई हर 5000 वर्ष रिपीट होती है। ये बातें दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को बाप समझाते रहते हैं। तुम कहते हो हमको आकर के पावन बनाओ, तो आकर के समझाना पड़े, सुनाना पड़े और पावन भी बनाना पड़े। फिर कहते हो पावन दुनिया में ले जाओ, शांति धाम तो है आत्माओं के रहने का स्थान। वो पावन दुनिया तो है, परंतु वहां शरीर नहीं होते पांच तत्वों के, इसलिए सुख दुख की दुनिया नहीं हो सकती। उसके लिए तो फिर पांच तत्वों की दुनिया में आत्माओं को आना पड़े। परमधाम तो सभी आत्माओं का स्थान है, ऐसे नहीं सिर्फ मनुष्य आत्माओं का है। फिर सतयुग सुखदान भी मानेंगे, वहां तो श्रेष्ठ आत्मा ही आवेंगी। फिर जब वो पुरानी दुनिया होती है, जैसे अभी कलयुग आयरन एज है, जन्म जन्मांतर की आत्मा में खाद पड़ गई है संग के रंग की, तो आत्मा तमो प्रधान हो जाती है। सत्ययुग सतो प्रधान को गोल्डन एज कहा जाता है। अभी तुम बच्चे इन बातों को समझते हो कि दुनिया में हर चीज पहले सतो प्रधान, बाद में रजो और फिर तमो बनती है। बाप जो नॉलेज देते हैं वो नॉलेज है जन्म जन्मांतर के लिए सोर्स ऑफ इनकम, भक्ति मार्ग में तो शास्त्र सुनाते हैं, वो शास्त्र भी सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहां की यादगार बने हुए हैं, इसी संगम युग की यादगार बने हुए हैं जहां बाप आते हैं, सन्यासी उदासी आदि जो भी शास्त्र सुनाते हैं उनका भी ड्रामा में नूद है। परंतु सत्य नहीं सुनाई सकते, क्यों? शास्त्रों में सच्चाई नहीं है क्या? कुछ तो सच्चाई है, नहीं तो बाप आकर के शास्त्रों का सार कैसे बताते हैं? परंतु शास्त्र अनेक मनुष्यों के लिखे हुए हैं, इसलिए उनमें तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना भरा हुआ है। अनेकता हो गई है, तो शास्त्र सब झूठे हो गए, फायदा कुछ भी नहीं। करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, अल्पकाल की खुशी मिल जाती है, और यहां तो तुम्हारी कमाई है 21 जन्मों की, क्योंकि तुमको बाप सत्य बात बताते हैं। ऐसे और कोई नहीं होगा जो ऐसे पढ़ता हो। ये है मनुष्य से देवता बनने की बात। नर को नारायण बनाना एक ही बाप का काम है। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। कोई भी साधु संत महात्मा ये कह नहीं सकते। तुमको वो नहीं कहेंगे कि हम तुमको पढ़ाते हैं। अगर वो तुमको कहें कि हम तुमको पढ़ाते हैं तो तुम उनसे पढ़ाई पढ़ेंगे? या और ही प्रश्नोत्तर करेंगे? तुम्हारे वो प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सकते। वो साधु संत तो कहते हैं हम भी भगवान हैं। तुम कहेंगे भगवान सर्वव्यापी होता ही नहीं, भगवान तो एक व्यापी होता है तब एक बात बताता है, और एक ही सच्ची बात बताता है। अनेक मुख तो रावण को होते हैं, एक मुख की सच्ची बात बताकर एक मुख वाले विष्णु का राज्य स्थापन करता है। आज तो अनेक मुखों वाले रावण का राज्य इस दुनिया में है। रावण भी कहता था मैं ही भगवान हूं। मुख अनेक थे, कहते हैं भगवान ने वेद शास्त्र आदि सुनाए, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, परंतु कहने मात्र कह देते हैं, जानते कुछ भी नहीं, समझते हैं ब्रह्मा के मुख में कोई मशीन रखी थी जहां से वेद निकल पड़े छप छप के। अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, प्रवेश करने की बात तो कोई की बुद्धि में नहीं है। सिर्फ गीता में एक अक्षर आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, परंतु कोई का ध्यान नहीं जाता। चित्र बनाए दिया है अर्जुन के रथ का, परंतु रथ को भी चैतन्य नहीं समझते। कैसा रथ समझ लेते हैं? जड़ रथ समझ लिया है, जानवर घोड़े समझ लिए हैं। अब ये सब बातें कौन कहते हैं? भगवान ने तो राजयोग की गीता सुनाई, जिस राजयोग सीखने से राजा बन गए, नहीं तो राजा बनने की पढ़ाई कोई नहीं, हिस्ट्री में पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई पढ़ाकर डॉक्टर बनाते हैं, मास्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। शास्त्रकार बनाते हैं, विद्वान पंडित आचार्य बनाते हैं, शंकराचार्य बन जाते हैं, परंतु राजा कब बनाया और किसने बनाया ये कोई बता नहीं सके। जन्म जन्मांतर ये हिस्ट्री में जो राजाएं हुए हैं वो कैसे बने, उनमें ये कंट्रोलिंग पावर कैसे आई? सभी मनुष्य मात्र में तो ये पावर होती नहीं, तो जरूर भगवान ने पढ़ाई पढ़ाई होगी। राजयोग से राजाई देते हैं, बाकी उन शास्त्रों में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट है नहीं। ये लोग वेदांत को ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है और वो गीता भी नहीं, जो कागज की बैठ लिखी है। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं सन्मुख बैठ करके सुनाते हैं, कोई धर्म पिता ने धर्म पुस्तक बैठ नहीं लिखी। न क्राइस्ट ने बाइबिल लिखी, न मोहम्मद ने कुरान लिखी, न गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा। तो भगवान भी आते हैं तो डायरेक्ट मुख से गीता सुनाते हैं, बाप तो सन्मुख बैठ समझाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा के मुख से सुनाकर चले जाते हैं, सुनने सुनाने से काम पूरा नहीं होता। भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष सुनते सुनाते रहे, तथ्य तो कुछ भी नहीं निकला। बाप तो आकर सुनाते भी हैं और समझाते भी हैं, और वो खुद करण करावनहार है, करते भी हैं और बच्चों से कर्म कराते भी हैं। फिर भी देखो माया ऐसी है जो बच्चों से विकर्म कराई देती है। बाप कहते हैं मनसा बल तूफान आवे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई ऐसा कर्म नहीं करना है। अगर कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई कर्म कर दिया तो 100 गुना पाप बन जाएगा। बच्चे समझते भी हैं, तो देखो क्या होता है, माया कैसे विकर्म कराए देती है। बाप कहते हैं मनमना भव, इस मन रूपी घोड़े को बुद्धि की लगाम लगा करके मेरे में खींच कर लाओ, मन मेरे में रमाओ, तो माया इंटरफियर नहीं कर पाएगी। परंतु अपन को आत्मा समझते ही नहीं। अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, और ऐसी बात तो और कोई नहीं कहेगा कि अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहे तो कहने वाले को खुद भी आत्माभिमानी बनकर रहना पड़े। इस दुनिया में एक ही भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो सदैव आत्माभिमानी रहकर रहता हो। वो तो एक ही आत्मा का पार्ट है जो सदैव स्वस्थिति में रहता है, और स्वस्थिति में रहने वाला ही तुम बच्चों को ये बात बता सकता है क्या कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। पतित तो सभी है ना, पुनर्जन्म लिया होगा तो पुनर्जन्म लेते लेते समय भी तमो पटाने। पहले नंबर का जो विश्व का मालिक था वो भी अभी तमो प्रधान है, तो औरों की तो बात ही क्या। राव और रंक तो होते ही है, सिर्फ वहां सुख होता है और यहां दुख है। ये दुनिया हैल है और वो है बिन है। हैविन में तो जरूर देवताएं ही रहते होंगे, हैविन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि उन्होंने विन किया। क्या? असुरों ने हार खाई और देवताओं ने विजय पाई, तो विजय पाने वालों को स्थान मिला हेवन। वहां रावण राज्य होता नहीं है, तो दुख की बात ही उठती है। कर्म भी यहां ही कूटने होते हैं, वहां तो कर्म कूटने की कोई बात भी नहीं होती। यहां तो तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, कहां? यहां पुरुषोत्तम संगम युग है, वहां तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको पढ़ाते हैं। भगवान पढ़ाता हो और स्कूल में कोई नहीं आवे तो इस स्टूडेंट को क्या कहेंगे? और भगवान आकर के फिर बनाते भी हैं भगवान भगवती, एक मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। यहां तो देखो बीमारी में भी लंगड़ाते रहते हैं, सेंटर पर कुछ किसको होगा तो आवेगा ही नहीं, परंतु भगवान की पढ़ाई तो मिस नहीं करना चाहिए। पहले नंबर वन को लगभग भगवान भगवती ही कहेंगे, ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर उनके पीछे विष्णु कहेंगे। ये क्या बात हुई है? ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ने नीचे, ये कंपैरिजन निराकारी दुनिया का है या साकारी दुनिया का है? ऊंच और नीच तो साकार दुनिया में ही होते हैं, तो साकार दुनिया में कौन है ऐसा जिसको ऊंचते ऊंचे कहा जाए? ऊंचते ऊंचे भगवान, उनके पीछे विष्णु कहेंगे। कोई चित्र ऐसा है? है? अरे बेसिक नॉलेज में प्रदर्शनी बीसियों बार समझाई होगी, भूल गए है? कोई चित्र ऐसा नहीं है। ऊंचते ऊंचे भगवान कौन? फिर पीछे रखेंगे विष्णु को। अरे तीन लोग का चित्र दिखाया है, उसमें तीन पुरियां दिखाई है। तीन पुरियों में तीन देवताएं दिखाई है। 33 करोड़ देवताओं में तीन देवताओं के ऊंचते ऊंच कहेंगे। फिर तीन देवताओं में ऊंचते ऊंच किसको कहेंगे? कहते हैं देव देव महादेव, देव ब्रह्मा, देव विष्णु, और उन दोनों देवों से महान शंकर को कहते हैं। तो विष्णु से ऊंचा कौन हुआ? विष्णु को दूसरे नंबर में रखेंगे या पहले नंबर में रखेंगे? कहते तो हैं त्रिमूर्ति भगवान, परंतु इस संगम युग का तो किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान उसको ही कहा जाता है जो स्वर्ग स्थापन करता है। और कोई को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो भगवान जरूर स्वयं स्थिति में रहने वाला होगा। जो सदैव स्वयं स्थिति में रहता है वो ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है, नहीं तो मनुष्य मात्र स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। हम उस हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं। फिर प्रश्न पैदा होता है कि हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं तो हम कहां होने चाहिए? हेवन में होना चाहिए। फिर हैं कहां? हेल में पड़े हैं या हेवन में हैं? क्यों ऐसा? क्यों? करोड़पति अरबपति का बच्चा हो और पैसे पैसे के लिए मोहताज क्यों होगा? क्या कहेंगे? जरूर कहेंगे बाप से बिछुड़ा हुआ है, या तो बाप को पहचाना नहीं है। घड़ी घड़ी संशय, घड़ी घड़ी निश्चय पैदा होता रहता है। बाप आकर निश्चय बैठाते हैं, माया निश्चय को घड़ी घड़ी उखाड़ देती है। नहीं तो पक्का निश्चय पैदा हो जाए तो कहां होने चाहिए? ब्रह्मा को एक सेकंड में जब पक्का निश्चय हो जाता है तो ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची जा सकती है नई दुनिया की, तो ब्राह्मणों के संकल्प से नहीं रची जाती है क्या? रची जाएगी। ब्रह्मा एक सेकंड में विष्णु बन सकता है, तो जो भी मनुष्य आत्मा है, जो भी ब्राह्मण आत्मा है, पक्का निश्चय बुद्धि बन जाए तो कहां अनुभव करेंगे? हेवन में अनुभव करेंगे। तो सभी स्वर्ग में क्यों नहीं है? दुखी अनुभव क्यों करते हैं? माया बार बार लोढ़ा क्यों खिलाती है? अगर सब स्वर्ग में आ जावे तो सारा झाड़ ही देवताओं का बन जावे। इस नॉलेज को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। क्या कोई चाहे इस नॉलेज को कॉपी करके दूसरों को सुनाना शुरू कर दे, भगवान राम बन करके बैठ जाए, विष्णु बन करके बैठ जाए, तो आखिरीन क्या होगा? आखिरीन सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलेगी, और दूध का दूध पानी का पानी रह जाएगा। बल कहते हैं हम ईश्वर की प्रेरणा से सुनाते हैं, ईश्वर हमको डायरेक्ट प्रेरणा देता है, परंतु बाप क्या कहते हैं? मैं कोई को प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं, मैं तो प्रवेश करता हूं और मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं। कोई कह नहीं सकता कि मेरे में बाप भगवान है, जिसमें आता हूं बाप के रूप में पाठ बजाता हूं, वो भी अपने मुख से ये नहीं कह सकता कि मेरे बाप भगवान प्रवेश है। बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा पाना है, ये बात कोई नहीं जानते हैं। गॉडफादर का वर्षा क्या है? कोई आदमी शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा कोई की प्रॉपर्टी बनने के लिए, प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए हकदार रहती है या नहीं रहती है? शरीर छोड़ने के बाद मान लो राजा के घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, उस आत्मा ने कहीं तो शरीर छोड़ा होगा, तो जहां शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा कोई राजा के यहां जन्म लेकर के राजाई का हकदार बनने वाली है, और वो हिसाब किताब उसने पहले ही तैयार कर लिया है। जहां जन्म वहां जीत होती है। उस राजा रानी के कर्मों के ऊपर पूर्व जन्म में उस बच्चे ने कहीं जीत पाई है तो राजा रानी को उसकी पालना करनी पड़ती है। तो कोई भी आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद वर्षा पाने के लिए अपने बाप के घर जाना पड़ता है, जाना पड़ता है या नहीं? है? नहीं जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। यहां भी इस बात का भी फाउंडेशन कहां पड़ता है, यहां भी कोई आत्मा अगर बाप का वारसदार बनने वाली है तो उसको बाप के घर में जाकर के दिव्य जन्म लेना पड़े, निश्चयात्मक बुद्धि बनानी पड़े। एक दिन आना एक दिन जाना और 7 दिन की भट्टी में पकना पड़े। वो स्थूल बच्चे के लिए होती है स्थूल गर्भम जेल या गर्भ महल, और यहां स्थूल की बात नहीं है, यहां है सूक्ष्म ज्ञान की बात। ये ज्ञान गर्भ महल है तो आत्मा को कहां जाना पड़े, बाप के घर में जाना पड़े। प्रैक्टिकल ज्ञान है ये, तो यहां साकार दुनिया की बात हुई, परंतु बाप निराकार है। जो वर्षा देने वाला बाप है वो असल में वास्तव में निराकार है या साकार है, है? असल में जो आत्माओं का बाप है और आत्माओं को अनेक जन्मों का वर्षा देने वाला है वो साकार बाप वर्षा देता है, बेहद का साकार बाप प्रजापिता वर्षा देने वाला है या निराकार परमपिता परमात्मा शिव वर्षा देने वाला है, है? आत्मा कौन सी है? निराकार परमपिता शिव की आत्मा है, प्रजापिता भी उससे वर्षा लेता है। तो सब आत्माओं को जो नंबरवार वर्षा लेने वाली है, भले एक जन्म का जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वाली हो, उनको कहां जाना पड़े, है? बाप के घर में जाना पड़े। कौन सा है बाप का घर, है? अरे बोल के चुप हो गए, परमधाम। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कौन है, शिव बाप, और उसका घर कौन सा है, परमधाम। तो जो भी आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर का सुख शांति का वर्षा लेने वाली, उनको वापस परमधाम जाना पड़े। अगर गॉड फादर का वर्षा पाना है तो उनके घर जाना है। गॉड फादर को याद करते करते जब तक पाप नहीं कटेंगे तो जा नहीं सकते हैं। या तो याद करने से पाप कटेंगे या तो सजाओं से पाप कटेंगे। आत्मा की देहाभिमानी की कट उतरेगी जरूर, और बाप के घर में जाना है। और जो भी धर्म संस्थापक आते हैं वो अपने अपने धर्म में महिमा पाते हैं, वो धर्म स्थापक भी परमधाम आवेंगे। पहले भी परमधाम आए थे, अभी भी आवेंगे। बाप लक्ष्य देते हैं कि बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। तो सब कहेंगे ये बात तो ठीक है, अब कोई सहज रास्ता अपनाते हैं कोई कठिन रास्ता अपना लेते हैं। सहज क्या है, सहज राजयोग कैसे होता है और कठिन योग हठ योग कैसे हो जाता है? साकार में निराकार को जो समझ लेते हैं उनके लिए जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस होने के कारण याद की प्रैक्टिस है ना। बच्चा जन्म लेता है मां को याद करता है, थोड़ा बड़ा होता है संगी साथियों को याद करता है, याद कन्वर्ट हो जाती है, और बड़ा होता है स्कूल में जाता है टीचर को याद करता है, फिर याद कन्वर्ट हो गई। बड़ा हुआ शादी हुई तो बुद्धि साथी में लटक जाती है, तो याद कन्वर्ट हो गई। तो यहां तो जन्म जन्मांतर की बात है, साकार में निराकार आत्मा जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाती है वो सहज याद आती है। तो बताया कि वो लिबरेटर एक ही है, उनको याद करते रहने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। कोई तो निरंतर याद करने लग पड़ते हैं और कोई को निश्चय नहीं होता है, तो निराकार को याद करते हैं और साकार को समझ ही नहीं पाते। ये धर्म स्थापक तो ऊंच पद वाले बनते हैं ना, कि नीच पद पाते हैं? हैं? धर्म स्थापक ऊंच पद पाते हैं अपने धर्म के बीच में या नीचा पद पाते हैं? अपने धर्म में तो ऊंच पद पाते हैं, वो भी आवेंगे, आकर के लक्ष्य ले जावेंगे, गार्ड को तो वो भी जानते हैं कि वास्तव में गार्ड फादर कौन है, बाकी है उनको याद करना। सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है, बहुत ब्रदर्स भी समझते हैं। सर्वव्यापी कहने से फादर हो पड़ता है, फादरहुड हो पड़ता है। तो उनको कब कापी नहीं कर सकेंगे? तो तुम तो सिद्ध करके बताते हो, जो हमारा गॉड फादर है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। अगर उस सदगुरु का कोई गुरु होता, उस सुप्रीम टीचर का कोई टीचर होता, उस सुप्रीम फादर का कोई फादर होता, तो उसका कोई एक ही शिष्य होगा क्या? ऐसे तो हो नहीं सकता। कहां भी जाओ, कोई भी तुमको ये राजयोग सिखला ही नहीं सकता। उन हठ योग सिखलाने वालों में और इस राजयोग सिखलाने वाले में कितना रात दिन का अंतर है। तुम अभी समझते हो कि ये ईश्वरीय क्लास है, ये ईश्वरीय स्टडी सोर्स ऑफ इनकम है, और एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए। तो ये पढ़ाई कब मिस नहीं करनी चाहिए? फिर भी देखो मिस कर लेते हैं, पूछना चाहिए। तुमने सबको जाकर के कहा कि हमको राजयोग की शिक्षा मिलती है भगवान से, फिर तुम घर में क्यों बैठ गए हो? जब भगवान तुमको ऊंचे से ऊंचे पढ़ाने वाला मिल गया, फिर तुम घर में क्यों बैठे हो? तुम तो कहते थे हम भगवान की पढ़ाई से इन लक्ष्मी नारायण मिसल महाराजा महारानी बनेंगे, फिर कहां बैठ गए? ये बातें समझने समझाने के लिए भी बड़ी ऑफिस चाहिए। सारा दिन वंचित हुई आत्माओं को चिट्ठी लिखते रहे, क्या बाप के बच्चे बनकर के वंचित तो बहुत होते रहते हैं ना, तो बहुत बड़ी ऑफिस चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, राजयोग सीखेंगे, फिर भी अगर ऐसी पढ़ाई न पढ़ी तो उनको रिमाइंडर भेजना चाहिए। यहां से चिट्ठी जाएगी तो जैसे सुप्रीम टीचर से चिट्ठी जाती है, तुम ऐसे कहते थे चिट्ठी में लिखो, तुम ऐसे कहते थे फिर अब क्यों नहीं आते हो। उन्होंने सेवा तो बहुतों की होगी, तो जिनों जिनों की सेवा की है, जिनको स्टूडेंट तैयार किया है, वो स्टूडेंट खुद ही बैठ लिखें, उनको चिट्ठियां लिखें। तुमने हमको ऐसे कहा फिर आप क्यों नहीं आते हो, ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई को पेड़ के ऊपर चढ़ा दो और नीचे से काट दो। हमको ऊपर चढ़ा दिया और नीचे से जड़ें काटना शुरू कर दिया। उनको शर्मसार करना चाहिए। तुम भगवान से नहीं पढ़ना चाहते हो, आपने भगवान को भी फारकती दे दी। तो ऐसा लिखा पढ़ी का ऑफिस बहुत बड़ा चाहिए। माया कितना गिराने की कोशिश करती है, ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखने से शायद बच जावे, कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होगा। क्योंकि भगवान के बच्चों को तो तरस पड़ता है, बच्चे समझते हैं माया ने कान से इनको पकड़ा हुआ है। कान से माया कैसे पकड़ती है, हैं? कोई भगवान बनकर बैठे हुए गुरु होते हैं तो उल्टी उल्टी बातें सुनाते हैं कान में, तो गुरु जैसे माया के रूप हो गए। माया कोई और रूप थोड़ी होती है, कोई न कोई स्त्री पुरुष के रूप में आती है, कोई पदार्थ के रूप में आती है। तो माया कान से पकड़ लेती है, बाप कहते हैं मेरे पास अगर कोई ऐसा राइट हैंड हो चिट्ठी लिखने वाला तो मैं उसको रखूं।
अरे
सारा दिन चिट्ठियां लिखते रहे, अभी तो ईमेल निकल पड़ा है, सारा दिन ईमेल से चिट्ठियां भेजते रहे। जो कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, उनको भी चिट्ठियां लिखनी चाहिए। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कहता है कोई स्वर्ग में ऊंची स्टेज में पधारा, उसकी आत्मिक स्टेज बन गई, वह स्वस्थिति को पा लिया, ऊंची स्टेज में चला गया। ब्राह्मण की दुनिया में कोई नहीं कहता है? अरे वो तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं ना, जो शरीर छोड़ता है ब्राह्मणों में तो क्या कहते हैं, आत्मा संपूर्ण हो गई, स्वस्थिति को प्राप्त कर लिया। कहां चला गया, ऊंची स्टेज में सूक्ष्म बतनवासी हो गया, फरिश्ता बन गया। नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो जो कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, ऊंची स्टेज में चला गया, उनको भी चिट्ठी लिखनी चाहिए। अरे उनसे पूछो, अभी कलयुग है या सतयुग है? क्या है? कलयुग है। तो कलयुग में स्वर्ग कहां से पधर गया? कलयुग में शरीर छोड़ेगा तो कहां जन्म लेगा? कलयुग में ही नरक में ही जन्म लेगा, नरकवासियों में ही प्रवेश करके दुख भोगेगा। स्वर्ग में देवताएं होते हैं। सतयुग जब होगा तब ही तो सतयुग में जावेंगे। अभी सतयुग स्थापन कहां हुआ है? कलयुग दुनिया में मरेगा तो कलयुग दुनिया में जन्म लेगा, सतयुग में मरेगा तो सतयुग में जन्म लेगा। अभी तो कलयुग है, तो लेटर लिखने वालों को भी प्रैक्टिस चाहिए। अभी देखेंगे ऐसे लगातार लेटर लिखने वाले कोई बाबा के पास आते हैं कि नहीं। हेड ऑफिस बाप दादा से पत्र जाने के लिए होना चाहिए, बहुतों का कल्याण हो सकता है। ऐसा टाइपराइटर होना चाहिए, टाइप करने वाला, जो सब कुछ जानता हो, हिंदी भी जानता हो, सिंधी भी जानता हो, अंग्रेजी भी जानता हो, सब भाषाओं में टाइप करना जानता हो, तो समझने वालों को बहुत सहज हो जाएगा। ये भी बहुतों को जगाने में बहुत फायदा है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट, और मीठे बच्चों को बाप का नमस्ते। फिर आ गया, एक बाप ही है जो सबको सुख देने वाला है, बाकी तो सभी दुख देने वाले। ये दुनिया है ही दुखदाम, और वो है सुखदाम। दुखदाम में तो जरूर दुख ही होगा। बहुत कहते रहते हैं, बाबा हमको ये परेशानी है, बाबा हमको यह दुख है, ये हमको बहुत तंग करते हैं। अरे ये दुखदाम है या सुखदाम है? दुखदाम है ना, तो कहना क्या? दुखदाम में तो सब दुख ही देंगे। वो शिवालय है और ये वैश्यालय है। भारत जब शिवालय बनता है तो उसकी महिमा अपरम अपार है। बाप भी भारत में ही आते हैं, और भारत में ही आकर के सर्व की सदगति करते हैं, और देशों में नहीं आते हैं, और धर्मखंडों में नहीं आते हैं। इसलिए भारत अविनाशी खंड है, और खंडों का तो विनाश हो जाता है। बाप भी अविनाशी है, और आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। मुझे कहते ही हैं, पतित पावन आकर के पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते हैं, आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम पावन बनते रहेंगे। ज्ञान सुनाने के लिए बुलाते हैं या पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं, उसके लिए पहचान देनी पड़े, ज्ञान देना पड़े। किस बात का? किस बात का ज्ञान देना पड़े? कि पतित से पावन कैसे बनेंगे, अथवा पावन देवता से पतित कैसे बने, कैसे बने है? पावन देवताएं थे, वो पतित कैसे बने? संग के रंग में आते आते, अनेकों के संग के रंग में आते आते पतित बने। ऊपर से ढेर की ढेर आत्माएं आई, और जो सोने जैसे सच्चे थे उनमें और धर्म की आत्माओं की ढेर खाद पड़ती रही, और अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने। तो बुद्धि में आ जाना चाहिए, फिर पावन कैसे बनेंगे? अनेकों के संग के रंग में आने से बुद्धि माने आत्मा पतित बन गई, तो एक के संग के रंग में बुद्धि रंग जाएगी तो आत्मा पावन बन जाएगी। मुझे पावन दुनिया में बुलाते ही नहीं है, कहां बुलाते हैं? पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, पावन दुनिया में थोड़े ही बुलावेंगे। ये भी खेल बना हुआ है। बाबा सब बच्चों को हंसी में डुरापा देते हैं कि तुम पावन देवताएं बन जावेंगे तो मेरे को याद भी नहीं करेंगे। मुझे पति दुनिया में बुलाते हो, सुख की दुनिया में नहीं बुलाते हो। पावन दुनिया में तो मुझे भूल जाते हो, हैं? भूल जाते हैं तो एहसान फरामोश हुए कि नहीं है? क्या जवाब देंगे? अरे जवाब नहीं है इसका। एहसान फरामोश होना अच्छी बात है क्या, यह खराब बात है? हैं? एहसान फरामोश होने वालों को देवता कहेंगे? कोई किसी के ऊपर एहसान करे, बड़ा भारी एहसान कर दे, और वो उस एहसान को भूल जाए, इनकार कर दे, तो उसे अच्छा आदमी कहा जाता है क्या? तो मैं कहेंगे बाबा हम तो जब परमधाम से आते हैं तो सब भूल जाते हैं, हमको तो कुछ भी याद ही नहीं रहता, तो हमारी तो कोई गलती नहीं। ये जो विनाश होता है ये भी दुनिया का एक इतना बड़ा एक्सीडेंट है। जैसे कोई को एक्सीडेंट बड़ा भारी हो जाता है तो पहले की सारी स्मृति गुम हो जाती है, ऐसे ही नई दुनिया में जाने के बाद हर आत्मा की स्मृति गुम हो जाती है। नई बुद्धि रूपी आत्मा आती है परमधाम से, तो तुम मुझे भूल जाते हो तो जैसे कि याद करने की जरूरत ही नहीं रहती। अगर सतयुग में आऊं तो फिर पुनर्जन्म लेकर के मुझे कलयुग में भी आना पड़े, सुख की दुनिया में आकर सुख भोगूं तो नरक की दुनिया में मेरे को दुख भी भोगना पड़े। परंतु ये तुम्हारा और हमारा ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारे लिए ड्रामा बना हुआ है सुख की दुख की दुनिया में आने का, और मेरे लिए ड्रामा बना हुआ है सुख दुख की दुनिया से परे रहने का। मैं तो पुनर्जन्म नहीं लेता हूं, बाकी तो सभी लेते हैं। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।